शांति। ओम शांति। हम सभी संगम युग पर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कुलभूषण है और ब्राह्मणों की विशेषता बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिलोकीनाथ, स्वदर्शन चक्रधारी, जो पूरे कल्प में हम नहीं होंगे, वर्तमान संगम युग पर ही ये टाइटल और ये उपलब्धियां हमें मिली हैं। आज की दुनिया में भी ब्राह्मण हैं, लेकिन वो ब्राह्मण नामधारी ब्राह्मण हैं और हम बाबा के बच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं, कर्म से ब्राह्मण हैं। वो जन्म से ब्राह्मण हैं, लेकिन हम भले जन्म से ब्राह्मण नहीं हैं, लेकिन कर्म से ब्राह्मण हैं। और बाबा ने बच्चों के लिए ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। इस ज्ञान यज्ञ में हम आहुति डालते हैं। दुनिया में भी यज्ञ रचे जाते हैं, लेकिन बाबा ने ये बेहद का यज्ञ रचा है। और फिर इस यज्ञ के बाद फिर कोई और यज्ञ करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये राजस्व अश्वमेध यज्ञ है क्योंकि ये हमें स्वराज्य अधिकारी बनाता है। राजस्व माना स्व पर राज्य करना, स्व की कर्मेंद्रियों पर हम अधिकारी बनते हैं। और ये अश्वमेध है, यानी ये जो देह है इसकी तुलना अश्व से की गई। आत्मा रथी है और उस पर सवारी करने वाली, इस शरीर पर सवारी करने वाली, जिसको हम अश्व कह सकते हैं। तो इस देह अभिमान का त्याग, देह भान का त्याग इस यज्ञ में हम करते हैं। और देह अभिमान का त्याग होता है तभी अन्य विकारों का भी हम त्याग कर पाते हैं, क्योंकि देह अभिमान ही विकारों का मूल है। कहते हैं आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और देह अभिमान विकारों की जड़ है। पुराने समय में राजा लोग यज्ञ रचते थे चक्रवर्ती बनने के लिए, उन्हें अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। तो वो इसीलिए अश्वमेध यज्ञ कहे गए क्योंकि उसमें वो किसी ना किसी अश्व को यानी घोड़े को छोड़ते थे और वो घोड़ा जो है वो पूरे उनके जो स्टेट्स थे उनमें भ्रमण करता था। और अगर वो घोड़ा उस स्टेट से निकल गया, किसी ने उसको रोका नहीं, तो इसका मतलब उस राजा ने चक्रवर्ती राजा बनने वाले की अधीनता स्वीकार कर ली। लेकिन अगर उसने उस घोड़े को रोक लिया तो फिर उनका युद्ध होता था आपस में, और उस युद्ध में जो विजयी होता था फिर उसे वो पदवी मिलेगी। तो इसीलिए इसे अश्वमेध नाम दिया गया क्योंकि इसमें अश्व छोड़ा जाता था। लेकिन बाबा ने हमें कौन सा अश्वमेध यज्ञ, ये देह रूपी अश्व को हमें, उसके भान को हमें छोड़ना है। और ये अविनाशी रुद्र द्वारा रचा हुआ गीता ज्ञान यज्ञ है जिसके द्वारा ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। यानी ब्राह्मण सो फरिश्ता सो हम देवता बनते हैं, नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। इस यज्ञ में पूरी पुरानी दुनिया की भी आहुति पड़ती है। सिर्फ हम अपने विकारों की आहुति नहीं देते हैं, लेकिन संपूर्ण पुरानी दुनिया की भी इसमें आहुति पड़ जाती है और दुनिया ही परिवर्तन हो जाती है। नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा, इसको कहते हैं नई दुनिया के लिए बाबा हमें नया ज्ञान देते हैं। ऐसा ज्ञान न पहले कभी दिया गया और न 5000 आने वाले 5000 साल तक फिर दिया जाएगा। तो हम ब्राह्मण, धर्म और कर्म दोनों से ब्राह्मण हैं। दुनिया के जो ब्राह्मण हैं वो भी धर्म कर्म करते हैं, वो भी भगवान का भक्ति पूजा पाठ करते हैं, लेकिन आज के जो ब्राह्मण है वो विधि पूर्वक धर्म और कर्म का पालन करें ऐसा नहीं हो पाता है। लेकिन हम बाबा के बच्चे, बाबा की श्रीमत प्रमाण, पूरे ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को धारण करते हुए चलते हैं। तो 5 मुख्य विशेषताएं हैं हमारे इस ब्राह्मण जीवन की जो हमें सच्चा ब्राह्मण बनाती हैं। एक है हाफ कास्ट ब्राह्मण जिसको बाबा कहता है, और एक है फुल ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण जो हैं। तो वो 5 विशेषताएं हैं। ब्राह्मण वो है, ब्रह्मा मुख वंशावली तो है ही, क्योंकि ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनकर के हमारा ये दिव्य जन्म हुआ, अलौकिक जन्म हुआ। इसीलिए संस्कृत में ब्राह्मणों को द्विज भी कहते हैं। द्विज का अर्थ होता है जिसका दूसरा जन्म होता है। तो एक तो लौकिक जन्म है, शरीर का जन्म है, लेकिन ये जो जन्म है हमारा ये अलौकिक जन्म है, दिव्य जन्म है, जो बाबा के पास हमारा हुआ है। बाबा के हम एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। और दूसरा, ब्राह्मण वो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी अमृत वेला में उठना और शिव बाबा को याद करना, ये ब्राह्मणों का धर्म है। तो बाबा ने हमें अमृत वेले के महत्व को बहुत विशेष कहा है, क्योंकि शिव बाबा जो भोलेनाथ कहलाते हैं, भोले भंडारी हैं, वो अमृत वेले अपने सब भंडार बच्चों के लिए खोलते हैं, वरदानों के, शक्तियों के, गुणों के। और अमृत वेले जो हम अनुभव करना चाहें बाबा से वो हम कर सकते हैं। बाबा कहते हैं कि अमृत वेले का समय विशेष बच्चों के लिए है। भक्तों का समय बाद में शुरू होता है, वो 5 बजे के बाद शुरू होता है जब भक्तों की लाइन लगती है, लेकिन उसके पहले बच्चों को अपना अधिकार अनुभव कर लेना है। तो अमृत वेले हम जितना पावरफुल योग करते हैं उतना ही हम अपने आप को भरपूर अनुभव करते हैं, और उसका प्रभाव हमारे सारे दिन पर पड़ता है। हम सब अनुभवी हैं, जब हम पावरफुल अमृत वेला करते हैं तब हमारा दिन कैसा होता है। और किसी कारण से अगर, क्योंकि माया भी जो है वो उसी समय चांस लेती है, माया को भी पता है कि ये इनकी कमाई का समय है और सबसे अधिक कमाई इनकी अमृत वेले ही होने वाली है, तो वो भी सुस्ती और आलस के रूप में अमृत वेले ही पहुंच जाती है। तो क्या होता है, फिर हम उठते तो हैं, संकल्प रखते हैं या अलार्म रखते हैं जो भी, पर क्या विचार आता है, रात को देर से सोए थे, रात को थके हुए थे, रात को सिर में दर्द था, तो फिर थोड़ी देर में उठेंगे, 5 मिनट बाद उठेंगे। वो 5 मिनट कब पूरे होते हैं, 5 बजे पता चलता है हमारा अमृत वेला तो पूरा हो गया। या उठ भी जाते हैं मानो, तो फिर बैठते भी हैं तो नेमीनाथ बनकर के बाबा कहते हैं बैठते हैं। नेमीनाथ माना नियम है इसलिए निभाना है, फिर चाहे झुटके मार के निभाओ। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जैसे हठ योगियों का म्यूजियम होता है ना, अलग अलग पोजेज होते हैं हठ योग में, तो ऐसे अमृत वेले भी बाबा को अलग अलग पोज दिखाई देते हैं बच्चों के, और कई कई बच्चों की तो ट्यून भी पहुंचती है कहां, परम धाम तक। हाँ, समझ सकते हैं कौन सी ट्यून पहुंचती है। तो ऐसे भी हम अमृत वेला करते हैं, तो ऐसा अमृत वेला करना ठीक है, नियम निभाने के भी मार्क्स हैं। कई बार बाबा कहते हैं भले योग लगे ना लगे, तभी तो नेमीनाथ का यादगार बना हुआ है, नहीं तो नेमीनाथ का यादगार क्यों होता। लेकिन फिर जो अनुभव हम करना चाहते हैं और सारा दिन जो हम अपनी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, जो कमाई हमारी होनी चाहिए वो नहीं होती। और बाबा क्यों अमृत वेले को महत्व देते हैं, क्योंकि अमृत वेला वो समय है जब प्रकृति का भी हमें सहयोग होता है। सतो प्रधान वायुमंडल होता है उस समय, सारे तमोगुण आत्माओं के दबे हुए होते हैं, क्योंकि सब सोए होते हैं तो वो वाइब्रेशंस होते ही नहीं हैं। तो हम जो स्थिति का अनुभव करना चाहें, खासकर जो पावरफुल स्थिति होती है वो अशरीरी स्थिति, बीज रूप स्थिति, परम धाम में बाबा की याद में अपने आदि अनादि स्वरूप को अनुभव करना, ये स्थिति हम अमृत वेले सहज अनुभव करवाते हैं। और इसमें हमें बाबा का भी सहयोग होता है, क्योंकि जो संकल्प हम करते हैं बाबा उसमें हमें सहयोग देते हैं। और वो हमने अगर अमृत वेले अनुभव कर लिया तो सारा दिन हम डबल लाइट रहेंगे, सारा दिन हर काम हम ऐसे करेंगे जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। हर चीज में हल्के, संकल्प में हल्के, वाणी में हल्के, अपने कर्म में हल्के, यानी फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना हमारे लिए बहुत सहज होगा। तो वो हम अमृत वेले अनुभव कर सकते हैं। वो सारा दिन हम कितनी मेहनत करें, अगर हमने अमृत वेले अनुभव नहीं किया और सारा दिन हम कोशिश करते हैं तो हमारे लिए वो मुश्किल होता है। हमारा मन भी उस समय सात्विक होता है, वो भी हमें सहयोग मिलता है। तो इसीलिए अमृत वेला पावरफुल है, उसके लिए पूरी दिनचर्या पर अटेंशन रखना जरूरी है। सारे दिन में मन में संकल्प विकल्प बहुत नहीं चले, सोते समय भी मन पर कोई बोझ ना हो, यानी हम बाबा को अपना चार्ट दें और पूरी तरह से मन को हल्का करके सोएं, बाबा की याद में सोएं। जिसे बाबा कहता है बाबा को गुड नाइट करके बाबा की याद की गोदी में सो जाओ, तो सुबह उठेंगे तो बाबा को ही सीधा गुड मॉर्निंग करेंगे। और अगर सोते समय बहुत संकल्प विकल्प में चले गए, कई बार ऐसा होता है सारे दिन तो कामों में व्यस्त होते हैं तो इतना बुद्धि बातों में नहीं जाती है, लेकिन जैसे ही बिस्तर पर आते हैं किसी के साथ जो सारे दिन में हिसाब किताब बना, कोई भी टकराव हुआ या किसी ने कुछ कह दिया, कोई भी बात फील हो गई, किसी भी बात का दुख हुआ, वो याद आने लगती हैं। और जब ऐसी बातें याद आने लगती हैं और उसी याद में आज सो गए तो सुबह कैसे उठेंगे, सुबह भी वही बातें मन में चल रही होंगी। फिर कितना भी बाबा को याद करने की कोशिश करेंगे, बाबा की याद में मन एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि सोते समय हमने अपने मन को खाली नहीं किया, बाबा को हमने वो समर्पित नहीं किया, बाबा को हमने वो चार्ज नहीं दिया। इसीलिए बाबा कहते हैं सोने से पहले रोज अपना चार्ट हमें बाबा को देना है। पास्ट इज पास्ट, पास्ट को हमने फुल स्टॉप लगा दिया, पास्ट को खत्म कर दिया। फिर ब्राह्मण वो हैं जो ब्रह्मा भोजन खाते हैं। बाबा ने ये हमें श्रीमत दी है ब्राह्मण जीवन में, कि बाबा की याद में बना हुआ भोजन शिव बाबा को भोग लगा के खाएंगे तो वो ब्रह्मा भोजन होता है। और ब्रह्मा भोजन दुख भंजन भोजन है, ब्रह्मा भोजन में बाबा की याद के जो वाइब्रेशंस हैं वो उसमें शक्ति भर देते हैं। ब्रह्मा भोजन ही खाना है, तो इस विधि पूर्वक चाहे वो प्रवृत्ति में रहते हैं, चाहे वो सेंटर पर रहते हैं, सभी के लिए घर में भी ब्रह्मा भोजन। अब वैसे तो कभी कभी खास जब कोई विशेष दिन होता है तो सेंटर पर कहते हैं ब्रह्मा भोजन रखा है, तो क्या उसी दिन ब्रह्मा भोजन होता है? क्या कहेंगे, उसी दिन ब्रह्मा भोजन होता है या रोज ब्रह्मा भोजन होता है? रोज ब्रह्मा भोजन होता है। तो बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि ऐसे नहीं कि जब खाना बनाते हैं तो मानो बच्चों को भूख लगी है तो जल्दी जल्दी में बाबा को भोग लगाना भूल गए, बच्चों को खाना खिला दिया। बाबा को खिलाए बिना पहले किसको खिला दिया? तो फिर वो ब्रह्मा भोजन नहीं होगा, वो खाने में वो शक्ति नहीं भरेगी। और खाते समय भी जैसे ब्रह्मा बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि मैं पूरा समय कोशिश करता हूं कि बाबा की याद में ही खाऊं और कहीं बुद्धि ना जाए, भले बाबा कहते हैं कि नहीं फिर भी बुद्धि तो खिसक जाती है, हमको भी यही कोशिश करना है कि खाते समय भी हम आपस में बातचीत ना करें और बाबा की याद में ही हम भोजन स्वीकार करें। तो क्यों इतना महत्व देते हैं बाबा ब्रह्मा भोजन को? ऐसा तो है ही, जैसा अन्न वैसा मन, वो तो कहा ही जाता है, लेकिन सचमुच जो भाव और भावनाएं उसमें होती हैं उसका प्रभाव मन पर आता ही है। एक कहानी आती है भक्ति की कि एक बार एक गुरु अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में गए, तो उनका नियम था वो भिक्षा मांग कर खाते थे, तो जब दिन हुआ तो सभी अपने अपने लिए भिक्षा मांगने के लिए गए, गुरु भी गए। जिस गली में वो गए वहां पर एक परिवार जो रहता था उनमें किसी बात को लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा था, थोड़ा कुछ गाली गलौज भी कर रहे थे वो किसी बात पर। तो जब ये उनके द्वार के सामने पहुंचे और जब घर की महिला ने देखा कि हमारे द्वार पर कोई साधु खड़े हैं, तो ऐसे तो धार्मिक प्रवृत्ति के थे वो, तो तुरंत वो बाहर आई दरवाजे पर और उसने पूछा तो आप कैसे तशरीफ लाए हैं। तो उसने कहा भिक्षाम देही, जैसे वो कहते हैं कि भिक्षा लेने के लिए आए हैं। तो उसने घर में जो भी भोजन बनाया था वो उनको दिया, भोजन लेकर के गए, उन्होंने भोजन किया। दिन भर तो सब ठीक था लेकिन रात को जब वो सोए, गहरी नींद में जब थे तो गहरी नींद में वो गाली देने लगे। तो उनके शिष्यों ने सुना कि हमारे गुरु कुछ कह रहे हैं, और जब ध्यान से सुना तो सुना कि तो इनके मुख से गाली निकल रही है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे गुरु के मुंह से नींद में कैसे गाली निकल सकती है। तो उन्होंने नींद तो डिस्टर्ब नहीं किया उनका, लेकिन सुबह जब सोकर के उठे तो पूछा उनको कि गुरुजी रात को आपके मुख से ऐसे वचन हमने सुने तो हमें समझ में नहीं आया, आज तक आपने कभी हमको ऐसे शब्द नहीं कहे, हम में से किसी को भी कभी भी किसी बात पर, लेकिन नींद में कैसे आपके मुख से ऐसे शब्द निकल सकते हैं। तो गुरु को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, अच्छा मैंने ऐसे बोला नींद में, क्योंकि पता नहीं होता है कि नींद में हम क्या करते हैं। तो जब सभी कहने लगे जिन्होंने भी सुना था, तो फिर उनको मानना पड़ा कि हो सकता है कि मैंने बोला है ऐसा। फिर वो विचार करने लगे क्यों आए मुझे मेरे मुख से ऐसे शब्द, ऐसा क्या हुआ जो ऐसा बोला मैंने। फिर उनको याद आया कि जहां से उन्होंने भिक्षा ली थी कल, उस घर में गाली गलौज हो रहा था, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, और वो भोजन मैंने किया है उसका प्रभाव मेरे मन पर आ गया। तो चेतन अवस्था में तो हम अपने कंट्रोल में होते हैं, तो वो तो कंट्रोल में रहा, उसका उस समय प्रभाव नहीं दिखा, लेकिन नींद के समय में जब अवचेतन स्थिति में मन चला गया तो उसका प्रभाव आ गया और उनके मुख से वैसे ऐसे शब्द निकले। तो इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि स्वप्न की अवस्था में भी अगर किसी आत्मा के प्रति आवेश या क्रोध के वश कोई कर्म होता है तो उसको भी हम ब्राह्मण जीवन की पवित्रता नहीं कहेंगे। तो मन पर तो इन चीजों के प्रभाव बहुत सूक्ष्म होते हैं, तो हमें इसीलिए ब्रह्मा भोजन ही खाना है, चाहे जो भी हो, हाँ कितनी भी जल्दी हो, लेकिन बाबा को भोग लगा करके ही भोजन को स्वीकार करना और कराना है। फिर ब्राह्मण माना जो ब्रह्मचर्य का पालन करे। तो दुनिया के ब्राह्मण तो आजकल ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जीवन का फाउंडेशन ही है, हमारे जीवन का आधार ही है पवित्रता। और बाबा तो केवल ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं रखते इसको, बाबा कहते हैं ब्राह्मण माना ब्रह्माचारी, सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं लेकिन ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला, जो बाबा ने संकल्प बोल और कर्म किए वैसे ही संकल्प बोल और कर्म हमारे भी हों। दुनिया में आज पवित्रता की धारणा को असंभव मानते हैं, लेकिन हम ब्राह्मणों के लिए ये सहज संभव है, चाहे वो प्रवृत्ति में रहते हैं तो भी पवित्रता की धारणा करते हैं। और बाबा कहता है कि जो महान आत्माएं हैं आज के कहलाने वाले, उनके सामने भी वो मिसाल है, उदाहरण है, और उसका आधार सिर्फ स्मृति दिलाई बाबा ने। ब्राह्मण जीवन की पवित्रता का आधार है, बाबा ने कहा मैं आदि अनादि शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, ये मेरा निजी स्वभाव है। और केवल एक जन्म की बात नहीं, लेकिन हम तो सतयुग त्रेता दो युगों तक पवित्र रहे हैं, तो पवित्रता हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इस स्मृति से समर्थी आ गई, और वो समर्थी से जो हमने हिम्मत रखी, बाबा की भी मदद मिली, और इस तरह से पवित्र रहना ब्राह्मण जीवन में आज की इस कलयुगी तमोगुणी वातावरण में सहज हो गया। तो इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन बाबा क्यों कहते हैं हमें, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही संगम युग में जो कुछ समय हम पुरुषार्थ करते हैं, पूरा संगम युग तो हम सबको नहीं मिला है, किसी को कितने साल मिले, किसी को कितने साल मिले, है ना, उसी साल में हमें संपूर्ण बनना है, हमें अपनी सत्व प्रधान स्थिति को प्राप्त करना है। तो जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तब हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी सहज बन पाते हैं। आत्मा जो 0 कला में चली गई, वो 16 कला संपन्न कम समय में बन पाती है। तो इतने कम समय में हमें इतनी ऊंची स्थिति को प्राप्त करना है, तो कुछ हमें एक्स्ट्रा पावर चाहिए, साधारण पावर से तो वो संभव नहीं है। इसीलिए बाबा हमें ब्रह्मचर्य के पालन की बात कहते हैं। फिर ब्राह्मण माना जो ब्रह्म ज्ञान सुनता है, वैसे भी ब्राह्मणों का धर्म माना जाता है ज्ञान सुनना और सुनाना, भक्ति करना और कराना। तो हम बाबा के बच्चों को भी रोज मुरली में बाबा कहते हैं, आज की मुरली में भी ये था कि हमें अपने जो ज्ञान सुनना है, जो मुरली सुनना है, उसमें तो रेगुलर पंचुअल रहना ही है। और फिर केवल ज्ञान सुनना नहीं, लेकिन उसका स्वरूप भी बनना, उसे अपने जीवन में समाना भी है, आचरण में भी लाना है। और उसके लिए हमें ज्ञान का मनन, चिंतन करना, विचार सागर मंथन करना, बाबा कहते हैं सारा दिन मन में ज्ञान का स्मरण चलता रहे। पुरानी दुनिया की बातें, समाचार की बातें, लौकिक बातें, वो नहीं, लेकिन चिंतन चले, प्रभु चिंतन और ज्ञान का चिंतन, ये ब्राह्मणों का सच्चा धर्म और नियम है। फिर हम दूसरों को भी दें जो हमने समझा है, जो हमें प्राप्त हुआ है, वो हमें दूसरों को भी उस लायक बनाना है, उन्हें भी बाबा के समीप लाना है। तो ये ज्ञान सुनना और सुनाना, ये हमारे ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। फिर ब्राह्मण वो जो ब्रह्म लोक को याद करे, ब्रह्म लोक परम धाम, रोज मन अपने घर की यात्रा करे, जो मेरा असली घर है, जहां से मैं आत्मा इस सृष्टि पर आई हूं, तो मुझे याद आना चाहिए कि इस सृष्टि पर मैं मेहमान हूं, यहां मैं सदा काल नहीं रहने वाली हूं, ये मेरा परमानेंट एड्रेस नहीं है। मेरा परमानेंट एड्रेस कौन सा है? परम धाम। तो रोज मन बुद्धि जब परम धाम में जाएगी, तो फिर इस दुनिया के, पुरानी दुनिया के जो लगाव हैं, पुरानी दुनिया के जो आकर्षण हैं, उन आकर्षणों से हम अपने मन बुद्धि को दूर कर पाएंगे। तो हम सभी ब्राह्मण नंबरवार यथाशक्ति इन ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं में चल रहे हैं। ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का जो अंतिम लक्ष्य है, वो है फरिश्ता बनना। बाबा कहता है फरिश्ता संपूर्ण स्थिति है, तो हमें संपूर्ण और संपन्न बनना है, जिसको बाबा बाप समान बनना भी कहते हैं। बाप समान बनना माना ब्रह्मा बाबा के समान फरिश्ता बनना, और शिव बाबा के समान निराकारी स्थिति का अनुभव करना। तो ये भी हमें इस साकार शरीर में रहते हुए, ऐसे नहीं शरीर छोड़ेंगे तब फरिश्ता बनेंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने जब देह का त्याग किया, तब उन्होंने फरिश्ता स्थिति को प्राप्त किया, ऐसा नहीं कहेंगे। ब्रह्मा बाबा ने इस व्यक्त देह में रहते हुए फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ किया। आप सभी सुनते हैं हिस्ट्री में कि कैसे एक बहन जो संदेशी बहन थी, जब वो वतन में गई उसने पहली बार सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का लाइट का रूप देखा। तो जब उसने बाबा का लाइट का रूप देखा तो वो पहचान ही नहीं, क्योंकि वो जो नीचे ब्रह्मा बाबा को देखती थी वो उससे बहुत अलग था। तो वो आई नीचे और उसने मम्मा से कहा कि मम्मा आज मैंने दूसरे ब्रह्मा बाबा को देखा। तो मम्मा ने उससे कहा कि दूसरे ब्रह्मा बाबा कैसे हो सकते हैं। तो उसने कहा कि मम्मा एक बाबा ऊपर था जिसकी लाइट बहुत तेज थी, वैसी लाइट हमारे ब्रह्मा बाबा में नहीं है। तो फिर मम्मा ने बाबा को सुनाया कि बाबा ये संदेशी बहन जो है वो ऐसे कहती है। तो बाबा को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये पहली बार राज खुला था कि ऊपर सूक्ष्म वतन में भी कोई ब्रह्मा बाबा है। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि उस संदेशी को दोबारा भेजो और पूछो। तब शिव बाबा को ऑलमाइटी बाबा कहते थे, कि ऑलमाइटी बाबा से वो पूछ कर आए कि ऊपर वाला बाबा कौन है। तो वो गई और उसने पूछा कि बाबा पूछते हैं कि ये बाबा कौन है। तो बाबा ने कहा जो नीचे ब्रह्मा बाबा है उन्हीं का ये संपूर्ण रूप है ऊपर, और जो नीचे वाला बाबा है उन्हें इस अवस्था को प्राप्त करना है। तो बाबा का इशारा है कि अब बाबा ऐसा पुरुषार्थ करे जो इस फरिश्ता संपूर्ण स्थिति को वो प्राप्त करे। तो संदेश मिला बाबा को, और जैसे ही बाबा को ये बात समझ में आई, ब्रह्मा बाबा ने अपनी तपस्या बढ़ा दी और बाबा ने अशरीरी स्थिति का अभ्यास, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना शुरू किया। और इसीलिए जो हमारे भाई बहने वो अनुभव सुनाते हैं कि उन दिनों में जब वो बाबा के सामने जाते थे तो जैसे अशरीरी हो जाते थे, वो व्यक्त बातें ही भूल जाते थे। कई बातें वो बाबा से करने के लिए सोच सोच कर आते थे, लेकिन बाबा के सामने बैठते थे बाबा की स्थिति ऐसी होती थी कि कुछ बोलने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी। बाबा उस अव्यक्त स्थिति का उन्हें अनुभव करा देते थे तो बातें ही खत्म हो जाती थी। बाबा को वो फरिश्ता रूप में देखते थे, लाइट रूप में देखते थे। तो हमें भी इस व्यक्त शरीर में रहते हुए ही ये अभ्यास, फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करना है। और बाबा कहता है जब हम स्वयं को आकारी रूप में अनुभव करेंगे, माना आत्मा लाइट है, इसको बाबा डबल लाइट स्थिति कहते हैं। तो मैं आत्मा तो लाइट हूं, लेकिन ये जो स्थूल शरीर है ये भी लाइट का बना हुआ है। इसको हमें ज्ञान के दर्पण में देखना है। वो दर्पण में तो हमें ये स्थूल शरीर दिखाई देता है, लेकिन ज्ञान के दर्पण से हम अपने फरिश्ता स्वरूप को देख सकते हैं। देख सकते हैं, नहीं देख सकते हाँ देख सकते हैं, अभ्यास की जरूरत है। बिना अभ्यास के तो नहीं देख पाएंगे। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया, ऐसे अपना अभ्यास करना है कि मैं डबल लाइट हूँ और दूसरे जो मेरे सामने हैं उनको भी हम उस लाइट रूप में देखें। आत्मिक स्थिति के अभ्यास के लिए तो कहते ही हैं कि हमें सबको आत्मा रूप में देखना है। ये आत्मा है, मैं आत्मा से बात कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ शरीर को भी लाइट के कार्ब में देखना है। इसे फरिश्ता स्थिति का अभ्यास कहा जाता है। फिर बाबा कहता है फरिश्ता माना जिसका और किसी से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता माना जो फर्श पर नहीं रहते, जो सदा अर्श पर रहते हैं। तो और किसी से कोई रिश्ता नहीं, यानी सर्व संबंध हमारे एक बाबा से हैं। जो भी संबंध है, कभी भी किसी से भी कोई हल्की रीति से हम संबंध जोड़ लेते हैं, हम सोचते हैं दिल की बातचीत करने के लिए तो कोई एक तो चाहिए ना, बाबा से थोड़ी हम सारे दिल की बात कर सकते हैं, और अगर करते भी हैं तो जवाब तो नहीं मिलता है। कई बार ऐसा सोचते हैं, तो कोई साकार में साथी तो चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं कंपनी और कंपेनियन बनाने की कोशिश करते हैं, दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं। एक तो कोई दोस्त होना चाहिए, या एक तो कोई सखी होनी चाहिए, या कोई मेरा बहन है, या कोई मेरा भाई है, विशेष है, मतलब सभी हैं बहन और भाई, तो सभी ये बेहद का परिवार हमारा, यही संबंध है। ब्राह्मण जीवन में एक ही संबंध है कि हम सब आपस में आत्मा के नाते से भाई भाई हैं, और शरीर के नाते से सभी क्या हैं, भाई बहन हैं। लेकिन ये मेरा विशेष सहयोगी है, ये मेरा विशेष स्नेही है, ये मेरा विशेष सेवाधारी है, होते ही हैं, चाहे वो सेंटर पर हो, चाहे वो हमारे परिवार में हो, कोई ना कोई ऐसे विशेष होते ही हैं। तो फिर बाबा क्या कहते हैं, विशेष है लेकिन विशेषता देने वाला कौन, विशेष बनाने वाला कौन, विशेष बनाने वाला कौन, बाबा। हम बाबा को अगर भूल जाते हैं, बाबा को बीच में से निकाल देते हैं, तो फिर हमारा रिश्ता उस आत्मा से जुड़ जाता है, आत्मा का आत्मा के साथ कर्म बंधन बनने लगता है, हिसाब किताब बनने लगता है, और फिर हम फरिश्ता नहीं बन सकते। हमेशा बाबा को बीच में रखना है, किसी भी आत्मा को आधार नहीं बनाना है, तब हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। जैसे कहा, फरिश्ता माना जो संकल्प वाणी कर्म संबंध सब में बिल्कुल हल्के, कोई बोझ नहीं हो। और बाबा हमेशा कहते हैं सारे बोझ मुझे दे दो, कोई भी बोझ अपने ऊपर मत रखो। और वो बोझ कैसे देंगे बाबा को, जो मेरा मेरा हम कहते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, संडे की मुरली में भी था, तो जो हम मेरा मेरा कहते हैं उन सबको क्या करना है, किसको दे देना है, तेरा तन मन धन सब कुछ तेरा, कहते हैं भक्ति में तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ये तन भी मेरा नहीं है, ये तन भी मैंने आधार लिया है, मैं अवतरित आत्मा हूं। अमृत वेले का संकल्प पहला बाबा हमेशा कहते हैं कि मैं धर्म स्थापन अर्थ इस ब्राह्मण जन्म में, क्योंकि ये हमारा ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है, ये ब्राह्मण जन्म अब लौकिक जन्म वो पास्ट का जन्म हो गया, ये मर्जीवा जन्म है, तो इस जन्म में मैं अवतरित आत्मा हूं जो धर्म स्थापन के लिए इस शरीर में अवतरित हुई हूं। तो जब मुझे वो कार्य करना है, मैंने शरीर का आधार लिया, और जैसे ही वो कार्य समाप्त हुआ, फिर से मैं अपने अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ, जो आत्मा का निजी स्वरूप है, जो मेरा फरिश्ता स्वरूप है, उस स्वरूप में हम अपने मन को स्थित कर लें। या फिर जैसे कहा कि हम इस पुरानी दुनिया, इस देह में मेहमान हैं, तो मानो कर्म का हिसाब किताब आ जाता है, कई बार आ भी जाता है कर्म के हिसाब किताब हम सबके सामने। तो अगर इस तन को बीमारी भी है, तो भी हम अगर मेरा मानेंगे तो बीमारी की चिंता होगी, उस बीमारी का दुख होगा, उस बीमारी का दर्द होगा, कई तरह के संकल्प चलेंगे, लेकिन ये तन बाबा का है, मेरे पास ये बाबा की अमानत है, इस अमानत की मुझे संभाल करनी है। जैसे किसी की अमानत कोई हमारे पास रखता है तो हम क्या करते हैं, उसे संभालते हैं ना, कि ये इसकी अमानत है और इसका मुझे फिर समय पर वो उसे देना है। तो बाबा की अमानत को मैं संभाल रही हूँ, बाबा जिम्मेवार है इस तन के लिए भी, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। तो फिर हम उस दुख दर्द से मुक्त हो जाएंगे, और तन का हिसाब किताब भी सूली से कांटा हो जाएगा, वो सूली जैसा महसूस होगा ही नहीं। और ऐसे ही मन मेरा योग नहीं लगता, क्या करूं, या कई बातों में हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, इतना पुरुषार्थ नहीं होता मेरे से, अभी तो तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है, लेकिन मेरी तो परिस्थितियां ऐसी हैं, हम तो नहीं कर पाते हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मानो उलझन में चला जाता है मन कई बातों की। तो बाबा कहता है, मन को मेरा समझते हो तो मन इन उलझनों में जाता है। मन भी बाबा का है, और मन बाबा का है तो फिर मन में कैसे संकल्प होंगे, सदा समर्थ संकल्प, सदा श्रेष्ठ संकल्प। अगर हम सचमुच वो निश्चय रखते हैं तो, अगर वो निश्चय नहीं है, संशय है, तो फिर जरूर इस तरह की हमें अनुभव होंगे। और बाबा कहते हैं फरिश्ते माना क्या होते हैं, जैसे कहा फर्श पर नहीं अर्श पर रहते हैं, यानी उनको पंख दिखाते हैं। पंख दिखाने का मतलब है उड़ती कला वाले, पंखों से उड़ना होता है, जैसे पक्षियों के पंख हैं तो वो उड़ते हैं, एक सेकंड में जमीन पे बैठेंगे, दूसरे सेकंड में आसमान में उड़ जाएंगे। और फरिश्तों को ऐसा भी दिखाते हैं कि वो आता है, अपना कार्य करता है और चला जाता है। और खासकर ये भी दिखाते हैं कहानियों में कि जहां जरूरत होती है वहां फरिश्ता पहुंच जाता है। हमारे यहाँ परियां कहते हैं, उर्दू में उसे फरिश्ता कहते हैं, जैसे परियां हैं उड़ने वाली, वो आती हैं और जहां जरूरत है वहां पहुंचे, अपना काम किया और गायब, ऐसे ही कहानियों में दिखाते हैं। तो इसका मतलब हमने, ये हमारी ही यादगार है और हमने इस तरह से पार्ट बजाया है कि जहां हमारी सकाश की आवश्यकता है, जहां हमारी सहयोग की आवश्यकता है, इस स्थूल स्तन से तो हम सब जगह नहीं पहुंच सकते, तो हमें बाबा क्या कहता है, अंतर्वाहक शरीर के द्वारा, यानी जो फरिश्ता शरीर है हमारा, वो शरीर को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन उतना अभ्यास अगर हमारा है तो हम उस अभ्यास से उस आत्मा को अनुभव करा सकते हैं। जैसे शुरू शुरू में ओम मंडली के समय में लोगों को साक्षात्कार होते थे, तो ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप के साक्षात्कार होते थे। बहुत विदेशी भाई बहने भी जो आते हैं वो ये अनुभव सुनाते हैं कि ज्ञान में आने के पहले हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, बाबा हमें दिखाई दिए, सपने में दिखाई देते हैं या वैसे ही वो किसी ध्यान में बैठे हैं और उनके सामने बाबा आए। इवन भारतवासियों में भी कई ऐसे हैं जिनको ज्ञान में आने के पहले ब्रह्मा बाबा का, या कोई दादियों का भी कोई, या सफेद वस्त्रधारी बहन का भी साक्षात्कार हुआ हो। इस सभा में भी कोई है ऐसे, अगर कोई है ऐसे जिनको ज्ञान में आने से पहले ऐसा कोई साक्षात्कार हुआ हो तो हाथ उठाओ। देखो मैं समझती हूँ 8-10 हैं, 8-10 इस सभा में भी बैठे हैं, तो ये किसकी सेवा है, जो आत्माएं अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा प्रकाश देती हैं। बाबा मनसा सेवा कहते हैं हमें, तो मनसा सेवा करने की ये विधि है कि बाबा के साथ फरिश्ता रूप में हम विश्व की सभी आत्माओं को जहां चाहिए, जहां सहयोग चाहिए। अब समय समय पर ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं इस विश्व में, कहीं बड़ा भूकंप आ जाता है, लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं, कहीं सुनामी आ जाती है, कहीं तूफान आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कितनी आत्माएं एक साथ शरीर छोड़ती हैं। और उस समय हमारा फर्ज क्या है, ब्राह्मण रूप में भी और फरिश्ता रूप में भी, कि हम उन आत्माओं को सहयोग दें। और अंतिम समय में भी जो साक्षात्कार होंगे, बाबा कहते हैं लाइट में ही साक्षात्कार होते हैं, जैसे जब सूर्य निकलता है उसका प्रकाश होता है तभी हमें सब कुछ दिखाई देता है, बिना प्रकाश के अंधकार में हम कुछ नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे ही जब हमारी वो लाइट की स्थिति होगी तभी अन्य आत्माओं को, देवियों के साक्षात्कार जो भक्तों को होंगे, अपने इष्ट के साक्षात्कार जो भक्तों को होंगे, वो साक्षात्कार स्वरूप, वो साक्षात्कार स्वरूप उनको तब अनुभव होगा। तो अंतिम समय का पुरुषार्थ अभी हमें करना है। और जो देवता स्वरूप है हमारा, बाबा कहता है कि एक आंख में फरिश्ता स्वरूप है, वो भी हर एक का संपूर्ण स्वरूप अपना अपना है, सभी का एक जैसा फरिश्ता स्वरूप नहीं होगा, हर एक की स्थिति अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार बनेगी। और फिर वैसा ही भविष्य का देवता स्वरूप होगा, तो एक आंख में फरिश्ता स्वरूप और दूसरी आंख में देवता स्वरूप, क्योंकि वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा भविष्य है, तो हमें उसका आह्वान करना है कि मैं देवता बना की बना। कहते हैं जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण आने लगते हैं, या जैसा चित्र होता है वैसा ही चरित्र होता है। तो जो चित्र हम अपने सामने देखते हैं, अपने देवताई स्वरूप का हम चित्र अपने सामने रखें कि ये मेरा भविष्य देवताई स्वरूप है, और देवता माना ये सर्व गुण मेरे अंदर होने चाहिए। देवता माना दाता, देवता माना सदा देने वाला, जिसका हाथ कैसे हो, देवी देवताओं के हाथ कैसे दिखाते हैं, सदा वरदानी स्वरूप में दिखाते हैं, तो लेवता नहीं। आज कलयुगी दुनिया की विशेषता क्या है, लेवता माना स्वार्थी है, मेरे लिए क्या हो जाए, मुझे क्या मिल जाए, हम कितना प्राप्त कर लें, इच्छाएं इच्छाओं पर इच्छाएं, एक इच्छा पूरी नहीं होती दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी पूरी नहीं होती तीसरी शुरू हो जाती है, इसलिए कहते हैं इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है और इच्छाओं के कारण ही आज इंसान दुखी है। लेकिन बाबा क्या कहता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, ब्राह्मणों के जीवन में ही नहीं है तो देवताओं के जीवन में तो कभी होगी ही नहीं। तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, यानी शिव बाबा मिला सर्व प्राप्ति हो गई है, इसीलिए बाबा में संसार है, बाबा में ही व्यक्ति वैभव और वस्तु का सब सुख समाया हुआ है। तो सदा हम दाता बने, इस ब्राह्मण जीवन में भी हम दाता बनेंगे, तभी वो संस्कार हमारे बनेंगे जो देवताई संस्कार है। मुझे देना है, मुझे प्यार देना है, मुझे शांति देनी है, मुझे सुख देना है, मुझे शक्ति देनी है, मुझे चाहिए नहीं, ये मुझे सम्मान नहीं देते हैं। लेकिन पहले पहले किसको देना है, पहले मुझे देना है। जो हम देते हैं ये प्रकृति का नियम है कि वो अपने आप हमारे पास लौट कर आता है। तो वो देवताई स्वरूप अपना सदा अपने चित्र में रखें, तो वो चरित्र हमारा स्वतः बनता रहेगा कि देवताओं के गुण कैसे हैं, देवताओं के लक्षण कैसे हैं, देवताओं के चरित्र कैसे हैं। वो चरित्रवान मुझे बनना है, मुझे चैतन्य म्यूजियम बनना है। दुनिया में तो देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, लेकिन चैतन्य रूप में वो हमारा साक्षात्कार करें। और उसके लिए बाबा कहता है कि जिस समय हम जो चाहें, जैसी स्थिति बनाना चाहें, वो स्थिति हमारी बन जाए। हम चाहें फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना, जितना समय हम फरिश्ता स्थिति के अनुभव में स्थित होना चाहें, अपने मन को उसमें स्थित करना चाहें, मन स्थित हो जाए। जितना समय हम अपने देवताई स्वरूप को इमर्ज करें, तो मन उस देवताई स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाए। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये तीनों ही स्वरूप में ये रूहानी ड्रिल हमको करते रहना है। जब चाहे हम अव्यक्त हो जाएं, यानी जब चाहे हम इस शरीर का आधार लें, और जब चाहे हम इस शरीर से न्यारे हो जाएं, और जो हमें बाबा ने कहा, जैसे अंतर्वाहक शरीर के द्वारा हम पूरे विश्व के कल्याण के निमित्त हैं, पूरे विश्व की सेवा के निमित्त हैं बाबा के साथ, वो हम सेवा करें। तो अपनी इस स्थिति को अनुभव करते करते फिर हम संपूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे। ओम शांति।
माता।